ओम शांति। आज हमारी सभा में आदरणीय डॉक्टर सतीश भाई उपस्थित हैं। आपका हम सबकी तरफ से तहे दिल से इस तपस्या भट्टी में स्वागत है। आज का हमारा दिन फरिश्ता स्थिति की अनुभूति का दिन है। फरिश्ता अर्थात हल्का। तो आदरणीय सतीश भाई आज ईश्वरीय मर्यादाएं और पवित्रता ये दोनों का ही फरिश्ता स्थिति अपनी आंतरिक हल्केपन के लिए बहुत बड़ा महत्व है। आज अपने अनुभवों से इन दोनों बातों को आप स्पष्ट करेंगे कि ईश्वरीय मर्यादाओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है और पवित्रता की गहराई या आत्मा की जो मूल सत्व प्रधान पवित्रता संपन्न अवस्था है वहां तक हम कैसे पहुंचे या ऐसी पवित्रता की दृढ़ता को हम अपने अंदर कैसे भरे इस विषय को आप स्पष्ट करेंगे। हम सब आदरणीय डॉक्टर सतीश भाई से परिचित हैं। दिलवाला ये जो भी प्रोग्राम चल रहा है और जितने भी लोग कैड में हार्ट पेशेंट से वो आकर के आपसे एक नई प्रेरणा और नई जिंदगी लेकर के जाते हैं। पूरी लाइफस्टाइल और मेडिटेशन को इतना सुंदर तरीके से समन्वय करके बाबा की सेवा का ये एक बहुत नवीनतम तरीका इसके लिए आप निमित्त बने हैं। नीचे ट्रॉमा सेंटर को भी आप संभाल रहे हैं। अपनी स्किल्स अपनी वाणी और अपने अनुभव इन सब का समन्वय करके आप बेहद सेवा में उपस्थित हैं। मैं आपसे नम्र अनुरोध करती हूँ कि आज के विषय को अपने अनुभवों से और स्पष्ट करें आदरणीय डॉक्टर सतीश भाई।
ओम शांति। ईश्वरीय मर्यादाएं और पवित्रता, ईश्वरीय मर्यादाओं का महत्व ब्राह्मण जीवन में और पवित्रता, इस विषय पर हम आपसे बात करें इससे पहले। और आज का दिवस जैसे बताया फरिश्ता दिवस, मतलब हमारे जो इस भट्टी में हमारा लक्ष्य है आज फरिश्ता स्थिति को अनुभव करना। तो फरिश्ता स्थिति गहराई के लिए दोनों बातें बहुत बहुत आवश्यक हैं। तो इस क्लास को शुरू करें तो इससे पहले हम फिर दोबारा 2 मिनट साइलेंस में चले जाते हैं ना, जैसे व्हाइट लाइट में अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लें, एकदम मन में सिर्फ एक ही स्मृति हो कि मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मस्तक के मध्य लगभग 2.5 इंच यहां से अंदर, 1.5-3 इंच यहां से नीचे एक चमकता हुआ सितारा जैसे 7 लाइट रंग नहीं उनका, 7 लाइट जैसे 7 सारे शरीर में फैल रही है। परमात्मा पिता वो भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा है और हमसे कितने दूर है, बाबा हमसे कितने दूर है, एक सोच की दूरी पर है। कितने दूर है, एक सोच की दूरी पर है सिर्फ ना। जैसे कहा बाबा तो हम पहुंच जाते हैं ना, हम कहते हैं अपना है मेरा घर मेरा बेडरूम, तो हम क्या पहुंच जाते हैं यहां से, अपने बेडरूम में पहुंच गए ना यहां बैठे बैठे, या अपने घर में पहुंच गए ना। तो ऐसे ही जस्ट बाबा कहा तो कहां पहुंच गए, बाबा की गोद में पहुंच गए ना। तो ऐसे एक या परम धाम कितने दूर है यहां से, परम धाम कितने दूर है, सिर्फ एक सोच की दूरी पर है ना। तो अभी आप पहले सोचेंगे मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं जिससे सारे शरीर में लाइट जा रही है, और फिर परमात्मा जो सातों गुणों का सागर है वो 7 लाइट मेरे अंदर आत्मा में आ रही है, आत्मा से होते सारी बॉडी में जा रही है। दो मिनट इसी अनुभव में बैठे, क्योंकि जितना अधिक हमारी इस एकाग्रता होगी उतना ही अधिक हम बाबा से ग्रहण कर सकेंगे शक्तियों को, और उतना ही अधिक हम जो बाबा से हम लोग सुन, मतलब बाबा की जो, मुझे भी तो मतलब मुझे क्लास का पता नहीं मुझे क्या बोलना है, किंतु बाबा फिर जो बुलवाएगा ठीक है। चलिए फिर बाबा जैसे अपने आप फिर इस समय के अनुसार जो क्लास होनी चाहिए वो होगी। चलिए दो मिनट अभी बहुत गहराई में चले जाते हैं। ओम शांति। पहला ईश्वरीय मर्यादाओं, ईश्वरीय मर्यादाओं का महत्व, ब्राह्मण जीवन में ईश्वरीय मर्यादाओं का महत्व। जैसे एक डॉक्टर कुछ दवाई देता है ना, चार या पांच गोली लिखता है उसके साथ, फिर चार पांच परहेज भी बताता है, ऐसे ही हमारे ब्राह्मण जीवन में चार नियम हैं और चार मर्यादाएं। सबसे पहले तो हम ब्राह्मण और मनुष्य में डिफरेंस देख लें। बेसिक डिफरेंस देखें, मनुष्य किसे कहते हैं और ब्राह्मण किसे कहते हैं। मनुष्य माना मन प्लस उष्य है ना, उष्य। तो अगर संस्कृत में इसका मीनिंग देखें, जो लोग संस्कृत जानते हैं, संस्कृत आप में से कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाएं, क्या मतलब होता है मनुष्य का? मन उष्य। बताएं जिन्होंने संस्कृत जानते हैं, जो मनुष्य का अर्थ है मन के वश में। जो मन के वश में है वो है मनुष्य, अर्थात जो मन के, जहां मन राजा है, मन का कनेक्शन किससे है? कर्मेंद्रियों से है, आंख से है, नाक से है, कान से है, मुख से है और त्वचा से है। तो जो हम जो आंखों के रस में बिजी है, कानों के रस में बिजी है, सुनने के रस में बिजी है, देखने के रस में बिजी है, खाने के रस में बिजी है, बोलने के रस में बिजी है और स्पर्श के रस में भी बिजी है ना, मतलब उसमें वश में है, वो मनुष्य है। और ब्राह्मण किसे कहते हैं? जैसे ब्रह्मा शब्द है ना, ब्रह्मा, ब्राह्मण बड़ा, ब्रह्मा को कहते हैं बड़ी मां कहते हैं ना, ब्राह्मा, तो बड़ी मां है ना। और ब्रह्मा किसे कहेंगे, ब्राह्मण किसे कहेंगे, ब्राह्मण किसे कहेंगे, ब्राह्मण है ना, अर्थात जिसका मन और बुद्धि क्या हो, विशाल हो, हद की ना हो, बेहद की हो। मनुष्य की मन और बुद्धि कैसी होती है? हद की होती है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। तो जिसकी हद में बुद्धि रहती है वो मनुष्य है। और ब्राह्मण की बुद्धि कहां रहती है, मन और बुद्धि कहां होता है? बेहद में, मैं सारे विश्व का हूं और सारा विश्व मेरा है ना? नहीं, बेहद क्या है? ब्राह्मण बेहद है ना, परमधाम बेहद है। जिसकी बुद्धि बाप में और बेहद घर में लगी रहे वो ब्राह्मण है। ठीक है, अगर हम ब्राह्मण शब्द की डेफिनेशन में चले जाएं तो भी समझ में आता है कि हमारी क्या मर्यादाएं हैं। हम हद में रह नहीं सकते हैं। हम बेहद में रहने वाले हैं। चलिए, अब ये चार नियम और चार मर्यादाएं कौन कौन सी हैं? पहला नियम ब्राह्मण जीवन का, वो पहला नियम है कि अमृत वेला। सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी भी अमृत वेला मिस ना करे। अमृत वेला समय कौन सा समय कहलाता है? लगभग दो बजे से 5 बजे तक का समय। इसका क्या महत्व है? अगर हम वैज्ञानिक भाषा में समझें तो इसका महत्व है कि हमारे जो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड, ये तीन ग्लैंड हमारी जो है, हाइपोथैलेमस क्या है? दोनों ब्रेन्स, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का कंट्रोलिंग सेंटर है। राइट ब्रेन हमारा इमोशनल ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल ब्रेन है। लॉजिकल का मतलब क्या होता है? अगर एक आम के पेड़ से आम गिरा, आम टूटा तो कहां गिरना चाहिए, कहां जाना चाहिए? जमीन पर। ये लॉजिकल बात है ना, आम टूट के कहां गिरा? जमीन पे आना चाहिए, ये लॉजिकल बात। लेफ्ट ब्रेन ये कहता है, और राइट ब्रेन क्या कहता है? राइट क्रिएटिव ब्रेन है ना, कि ऊपर भी जा सकता है कुछ नया है ना, तो राइट ब्रेन नया। तो इन दोनों का कंट्रोलिंग सेंटर क्या है? हाइपोथैलेमस में है, मतलब दोनों का बीच में जो हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस के नीचे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड माना जो ग्लैंड में फिर वो रस निकलते हैं, उसके अनुसार जो हमारी भावनाएं, स्मृतियां, वृत्ति, संकल्प, वो हाइपोथैलेमस में जाके केमिकल में कन्वर्ट होते हैं, और फिर उसके अनुसार पिट्यूटरी ग्लैंड रस निकालती है, जो सारी बॉडी में हार्मनी पैदा करते हैं। और उसके पीछे, उसके थोड़ा पीछे पीनियल ग्लैंड है, जो एक्चुअली जो आत्मा है वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में है। चलिए, तो आत्मा यहाँ से लगभग 2.5 इंच अंदर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के मध्य स्थित है ना। कई बार हम कहते हैं आत्मा यहाँ स्थित है, यहाँ नहीं, यहाँ से 2.5 इंच अंदर है ना, और यहाँ से 3 इंच नीचे, जहाँ ये दोनों पॉइंट मिलते हैं ना, वहां पर दोनों ब्रेन्स को भी कंट्रोल कर रही है। हाइपोथैलेमस जिसमें हमारा टेम्परेचर, हमारा एक घड़ी है हमारे हाइपोथैलेमस में, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे हमें मॉर्निंग वॉक करनी है, कितने बजे कब हमें मेडिटेशन करने का बेस्ट समय है, कब नाश्ता करना चाहिए, कब लंच करना चाहिए, कब डिनर करना चाहिए, कब हमारा काम जिसमें हम घर का काम या कोई भी हम ऑफिस का काम किसमें बेस्ट कर सकते हैं उसका भी समय उसमें होता है ना। तो घड़ी हमारे अंदर लगी, उसके अनुसार हमें हर काम करना है। तो ये जो हमारी जो एक्चुअली मैं आपको अगर इसके दूसरे रूप में कहूं कि चार नियम और चार मर्यादाएं जो बाबा हमें सिखा रहा है, ये नए जीवन की आने वाले युग की नींव डाल रहा है, ताकि हर चीज हम इस बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार करें। अभी अभी इस युग में हमने क्या किया है, अभी प्रेशर की वजह से, जीवन के प्रेशर्स, दबाव, रिक्वायरमेंट्स, आपके घर के, आपकी नौकरी के प्रेशर्स, आपके धंधे के प्रेशर्स, बच्चों के प्रेशर्स, उनके कारण हमने सब कुछ बदल दिया, सोने का समय, उठने का समय, खाने का समय, सब कुछ बदल दिया ना। तो सबसे पहली जो बाबा हमें सिखा रहा है वो है कि हर बच्चा, जो बाबा का बच्चा जो देवता बनेगा, पहले ब्राह्मण बनेगा फिर देवता बनेगा, आज की मुरली में था ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, तो ब्राह्मण माना ही जो अमृत वेला पावरफुल करे, ठीक है। और अमृत वेला का इसमें 30 मिनट हमारी आनंद की स्थिति होनी चाहिए। कौन सी स्थिति होनी चाहिए? खाली हम अमृत वेला उठे उसका महत्व नहीं है, उठ के हम बैठे 45 मिनट उसका भी महत्व नहीं है, किंतु हमें क्या 30 मिनट हमारी आनंद की स्थिति रही। आनंद की स्थिति कब होगी? आनंद की स्थिति कब होगी? जब आत्मा परमात्मा की या बाप की याद में खो जाएगी, लवलीन हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ परमात्मा ही ज्ञान का सागर, परमात्मा ही सिर्फ आनंद का सागर है, सिर्फ बाबा ही आनंद का सागर, कोई मनुष्य आनंद का सागर नहीं हो सकता। जब आत्मा अपने बाप के लव में लीन हो जाती है, लव लीन हो जाती है, तो आनंद की अनुभूति होती है। और सिर्फ अमृत वेले के समय में ही विक्रम विनाश हो सकते हैं। विक्रम क्या होते हैं, पापक्रम क्या होते हैं? पापक्रम वो मेमोरीज हैं, वो स्मृतियां हैं जो हमारे अंदर, जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं, ये कर्म कहलाते हैं, है ना। कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी हम करते हैं वो कर्म कहलाता है, ठीक है। तो ये कर्म कहलाते हैं, और ये कर्म हम जब विकारों के वश कर्म करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश हम कर्म करते हैं, तो वो हमारे अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो वो जो रिकॉर्ड हो जाता है, वो रिकॉर्डिंग और वो फाइलें सब अंदर रहती हैं। फिर वो व्यक्ति जैसे ही मेरे सामने आता है वो फाइल वापस खुल जाती है, फिर वो विकर्म वापस हो जाता है, इसलिए इसे पाप कर्म कहते हैं। आपने देखा हो कई बार 20 साल पहले भी कोई व्यक्ति हमको मिला हो, किसने हमसे गुस्सा किया हो या हमें धोखा दिया हो, 20 साल से मिला नहीं है, उसकी याद भी कई बार नहीं आई है, कभी नहीं आई है, किंतु आज दिखाई दिया तो क्या होगा, देखते क्या होगा उसको, वो सब बातें याद आ जाएंगी और फिर हमारा व्यवहार उसके वैसा ही हो जाएगा। भले हमने उसको बीच में सोचा हो नहीं, नहीं बीच में हमें मिलेगा, कभी मिलेगा तो उसको हम माफ कर देंगे, है ना, उससे हम कुछ नहीं कहेंगे, या मन में हमने योग में रहकर उसको माफ कर भी दिया हो, है ना, नहीं, कि जब मिलने पर क्या होता है, फिर दोबारा वही बात हो जाती, नहीं हो जाती, है ना। तो इसे पाप कर्म कहते हैं, क्योंकि ये पाप, ये चीजें फिर बार बार और ज्यादा हम वही नेगेटिव कर्म करते जाते हैं। तो विक्रम विनाश करने का टाइम कौन सा है? अमृत वेला। मैं बताऊंगा विक्रम विनाश कैसे होता है, ठीक है, कि तो अमृत वेला सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पावरफुल अमृत वेला माना कम से कम 30 मिनट आनंद की स्थिति में, अर्थात बाप के लव में खो जाना। इसे आप नियम कहो, मर्यादा कहो, ये ब्राह्मणों का पहला ब्राह्मण की निशानी है, ठीक है। ब्राह्मण कभी भी 4 से 5 के बीच में सो नहीं सकता है, पक्का, हम सभी ब्राह्मण है ना, तो हम कभी सो नहीं सकते हैं, तो और उठ के बल्कि 3:30 बजे उठ के मुंह हाथ धो के ब्रश करके फ्रेश होकर के फिर हम बाबा की याद में बैठ जाएं। और अमृत वेला किसका पावरफुल होगा? जो रात को समय पर सोएगा। कोई कहे 11 बजे सो के फिर मैं अमृत वेला करूं, पॉसिबल नहीं है। और अमृत वेला किसका पावरफुल होगा? जो रात को सोने के पहले अपना सारे दिन का पोता मेल बाबा को पहले दे देगा, पोता मेल हिसाब किताब। सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जो कुछ भी मेरे साथ आज गलतियां हुई, मैंने जो कुछ गलत किया श्रीमत के अनुसार नहीं किया, वो सब हम जानते हैं, है ना। जो कुछ भी हमसे गलत होता है ठीक होता है हम जानते हैं ना। तो बाबा को जो कुछ भी हुआ जैसा भी हुआ वो सारा का सारा सुबह से लेकर शाम तक स्कैन कर लो, है ना, कि बाबा अपने आप को देख लो, आदत डाल लो, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। एक सेकंड कितनी देर लगती है? मैंने देखा 2 मिनट भी नहीं लगते हैं सारा स्कैन करने में। जहां जहां गलतियां हुई होती हैं एकदम ध्यान आ जाती है, मैंने यहां गलती, ये गलती यहां हुई, वो व्यक्ति मुझे मिला था उससे मैंने गलत बोल दिया, या उसने मुझे कुछ बोला था मुझे फील हुआ था, या मेरे से यहां गलती हो गई थी, है ना, यहां मैंने गुस्सा कर लिया था, या ये मेरे से यहां पर थोड़ी सी अमर्यादित कर्म हो गया था, है ना। तो एकदम चेक कर लो, है ना, चेक करके। और बेस्ट तरीका क्या है? लिख लो, लिखो, क्योंकि बाबा के पास हमारी आवाज नहीं पहुंचती है, किंतु जब हम लिखते हैं ना तो लिखते हुए हमारी भावनाएं लिखने में जाती हैं, भावना बाबा तक पहुंचती है। तो जैसे ही हम उसको लिख दें कि बाबा आज मुझसे ये हो गया, बाबा मुझसे आज ये हो गया, इतने बजे ये हो गया, बाबा ऐसा आज ये हो गया, बाबा ऐसा हो गया, बाबा ऐसा हो गया, तो लिख करके साइन करके बाबा को क्या करें, 000 पे फैक्स कर दें, है ना। 000 बाबा का हॉटलाइन फैक्स नंबर क्या है? 000। क्या कैसे डायल करते हैं उसको? मैं आत्मा 0, आपको पता ना 10 डायल कर सिटी के बाहर जाते हैं, मैं आत्मा, जैसे आप एक डायल कर शहर के बाहर पहुंच जाते हैं, फिर टेलीफोन में 20 डायल करें तो देश के बाहर पहुंच जाते हैं, और 3 जीरो डायल करें तो दुनिया के बाहर पहुंच जाते हैं ना। दुनिया के बाहर कौन है? परमधाम और शिव बाबा, है ना, तो हम तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। तो कैसे डायल करना है? मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, और अभी तक जो कुछ बीत गया मल्टीप्लाइड बाय 0। 1 करोड़ को 0 से गुणा करो आंसर क्या आएगा, और 10 करोड़ को गुणा करो तो आंसर 0, जो बीत गया वो 0 हो जाए बस, ठीक। बाबा को दे दिया, बाबा के पास पहुंच गया, फिर अपना चार्ट भरो और फिर बाबा को याद करके सोचो। और हमारा बेडरूम कौन सा है? जो हमारा बेड है ना वो तो गैरेज है, ये गाड़ी है ना, तो गाड़ी कहां पार्क करना चाहिए? गैरेज में। किंतु हम कई बार गैरेज में सो भी जाते हैं, है ना, बेड पे नहीं सोना है, कहां पे सोना है हमको? हमारा बेडरूम कहां है? सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन हमारा बेडरूम है, और बाबा की गोद हमारा बेड है ना। तो आप बाबा की याद में ऐसे बैठो, वही 00 करके बैठो, है ना। तो मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, और अभी तक जो बीता 0, उसमें ही पहुंच जाओगे ऊपर, है ना। एकदम बाबा सूक्ष्म वतन में बैठा है, एकदम उसी गोद में जाके फिर सोचो, तो नींद इतनी बढ़िया आएगी। और कम से कम, वैसे मैं आपको बता दूं कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी 6 घंटा नींद आवश्यक है, 9:30 सो जाना चाहिए। अगर 3:30 जो उठना है ना तो 9:30 सो जाना चाहिए। और कभी भी सोने से पहले टेलीविजन नहीं देखना चाहिए, खबर भी देखनी नहीं चाहिए। वैसे बाबा के बच्चे कभी भी टेलीविजन नहीं देखते हैं, आप में से देखते हैं कुछ? कभी नहीं देखना चाहिए। मैं इसके बारे में एक बात बता दूंगा आपको, क्योंकि हम जो जब टेलीविजन देखते हैं तो टेलीविजन देखने से हमारी जो ब्रेन, इस पर रिसर्च हुई है कि जब हमारी टेलीविजन की रिदम, उसके फ्रेम होते हैं, फ्रेम समझते हैं, 1 सेकंड में 20 फ्रेम बदलते हैं। जब 1 सेकंड में 20 फ्रेम है ना, 20 फोटो बदलती है, तो फोटो हमको चलती हुई दिखाई देती है, अर्थात बोलता हुआ आदमी दिखाई देगा। खबर भी आ रही तो 20 मिनट 20 फ्रेम बदलेंगे तो फोटो दिखाई देगी चलती हुई, बोलता हुआ आदमी दिखाई देगा। कोई सीरियस सीन होगा या ऐसा सीन होगा जो फास्ट दिखाना होगा, कोई मर रहा है, कोई गाना गा रहे हैं, कोई इसमें सस्पेंस है, तो उसकी स्पीड 30, 40, 45 तक भी कर देते हैं। इसलिए आपने कहा कोई बच्चा टीवी देख रहा होता है या आप भी टीवी देख रहे हो, तो टीवी में इतना खो जाते हैं, अगर वहां पे सीन रोने वाला तो आप भी रोने लगते हो, और हंसने वाला तो आप भी हंसने लगते हो, नहीं होता ऐसे, आप इतने एब्जॉर्ब हो जाते हो। तो ये देखने में आया रिसर्च में कि आपकी फ्रीक्वेंसी, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी और टीवी का फ्रेम रेट सेम हो जाता है। अर्थात टीवी का फ्रेम रेट 20 है, 20 फ्रेम बदल रहे हैं, तो आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी 20 हो जाती है। अगर 25 हो गया तो वहां पर, तो आपका ब्रेन की फ्रीक्वेंसी 25 हो गई, 30 है तो 30 हो गई, 40 है तो 40 हो गया, 45 हो तो 45 हो, ठीक है। और हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो ब्रेन की होती है वो 13 से 18 होती है, बीटा रिदम जिसे कहते हैं। और 19 से लेकर 30 तक की जो रिदम होती है ना, वो इसे बीटा प्लस कहते हैं। वो चिंता में होती है, डर में होती है और चिड़चिड़ेपन, आदमी चिड़चिड़ापन हो जाता है ना जब, आदमी को इरिटेशन होती है तो उसमें होती है। और अगर और भी 35 है, 40 हो गई, तो 35 पे आदमी को गुस्सा आता है जोर से, 40 पे आदमी पागल हो, 45 पे पागल हो जाता है और 40 पे किसी को मारने को दिल करता है, ठीक है। तो बिना गुस्सा किए आप गुस्से वाली फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाते हो, चिंता वाली फ्रीक्वेंसी में पहुंच, डर वाली फ्रीक्वेंसी, बिना डरे दर्द वाली फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाते हो। और नींद माना 4 से कम। अब मान लीजिए आप 35 पे पहुंच गए, 40 पे पहुंच गए, तो 4 पे पहुंचेंगे क्या? नींद माना डेल्टा रिदम, डेल्टा स्लीप है ना, तो डेल्टा स्लीप अगर होगी तो ही तो आप नींद में पहुंचेंगे। और एक होती है अल्फा स्लीप, उसमें 10 तक रहती है, 8-10 के बीच में रहती है। थीटा स्लीप 4-7 के बीच में रहती है। तो अगर आप, और हमें कौन सी चीज, डेल्टा स्लीप चाहिए। डेल्टा स्लीप में ही हम फ्रेश हो पाते हैं। तो बताइए, टेलीविजन देखने वाले कभी भी गहरी नींद में सोएंगे क्या? अगर आप 40 से सोए, 40 की फ्रीक्वेंसी में सोए, तो 11 बजे तो जाके आपकी 20 होगी फ्रीक्वेंसी, 12 बजे आपकी 10 होगी, कच्ची नींद आएगी 12 बजे है ना, और फिर जाके 1 बजे जाके गहरी नींद आएगी। जो इसको 1 बजे गहरी नींद आएगी, क्या वो व्यक्ति सुबह 4 बजे उठ सकता है? क्या 2.5 घंटे में वो फ्रेश हो जाएगा? तो ऐसे हम अपने आप को धोखा देते हैं। तो अपने आप को धोखा ना दें, ठीक है। दो नाव में पैर रखें तो क्या होगा? क्या होगा है ना, टेलीविजन भी देख लें, अमृत वेला भी कर लें। नहीं, बाबा ने क्या कहा है, सिनेमा सिन की माँ है ना, ये सिनेमा तो है, टेलीविजन नहीं है, वो सिनेमा ही है ना? सारे सीरियल क्या है, सिनेमा ही तो है ना, नहीं है सिनेमा? सब सीरियल्स क्या होते हैं, सिनेमा ही ना, छोटे छोटे सिनेमा है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि हमको कभी भी बाबा के बच्चे को टेलीविजन नहीं देखना है। आज से 4.5 साल पहले मैं कभी कभी न्यूज देख लेता था। आज से दादी ने 31 दिसंबर 2008 को हम लोगों से मिल रही थी, दादी जानकी जी मिल रहे थे बाबा के दिन, बाबा 31 दिसंबर को आए थे ना, तो दादी मिल रही, दादी ने कहा आप में से हम लोग 15-20 भाई बैठे थे, बहने नहीं थी, सिर्फ भाइयों से मिल रही थी, बड़े भाइयों से मिल रही थी। तो दादी ने कहा आप में से कितने लोग टेलीविजन देखते हैं? सभी ने हाथ उठाया कि दादी हम न्यूज देखते हैं। सभी देखते थे, मतलब सभी हमारे जो थे वो सभी बड़े भाई देखते थे, मैंने भी हाथ उठाया था उसमें से। फिर दादी ने कहा मैं तो कभी नहीं देखती हूँ टेलीविजन, मैं तो कभी अखबार नहीं पढ़ती हूँ, तो आज के बाद आप कभी भी अखबार नहीं पढ़ना, टेलीविजन नहीं देखना है ना। हाँ जी, 1/1/2008, बहुत अच्छा। तो मैंने उसके बाद से कभी फिर टेलीविजन और न्यूज नहीं, अखबार नहीं पढ़ा, ना मैंने अखबार पढ़ा उसके बाद, ना कभी टेलीविजन देखा, न्यूज भी कभी नहीं देखी है ना। क्योंकि जब टेलीविजन देखते तो इसका सबसे बड़ा ये साइड इफेक्ट होता है, तो कभी भी न्यूज भी नहीं देखो टेलीविजन। न्यूज भी आपको अपने आप पता लग जाती है, दुनिया वाले अपने आप बता देते हैं, कोई मोटी न्यूज होगी तो अपने आप बता देते हैं। बाबा सुबह अमृत वेले बता देता है, बच्चे देखो वहां पे भूकंप आया ना, अखबार में तो 8 बजे पता, 9 बजे पता लगेगा ना, हमें सुबह पहले अमृत वेले पता लग जाता है कि बच्चे चलो वहां से बामनसा सेवा करने चलते हैं ना, आप वहां जाओ फलां जगह आज भूकंप आया है ना। फिर बाद में पता लगता है जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां भूकंप आया था, तो हम तो पहले ही जाके मनसा सेवा सुबह सुबह करके आ गए है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि टेलीविजन, मतलब पहले लेटर लिखो, फिर चार्ट लिखो, और चार्ट लिखने के बाद फिर आप अपना बाबा को याद करके सो जाओ। तो 6 घंटा जब अच्छी नींद करोगे ना तो सुबह सुबह फ्रेश होकर उठोगे, राइट। और फ्रेश होकर उठेंगे तभी हम अच्छा अमृत वेला कर सकते हैं। जब हम डेल्टा स्लीप से उठते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी 4 से कम होती है, और 4 से कम होती है तो उठते ही क्या होगा, एकदम बाबा को गुड मॉर्निंग किया ब्रश, और पहले आधे घंटे में जो संकल्प करते हो ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और एक याद रखें, अगर हमने पिछले दिन जो गलत काम किया है सुबह उठते ही वही संकल्प सबसे पहले आता है। आप सभी को भी कोई भी गलत काम किया होगा, कोई भी गलत कुछ दृष्टि वृत्ति या कुछ भी गलत सोचा है, गलत कुछ भी हो गया होगा, सबसे पहले वही याद आएगा। इसलिए सोने के पहले जरूरी है कि चार्ट लिखना, लेटर लिखना और बाबा से माफी लेके बाबा की गोद में सो जाना। और फिर अमृत वेला पाओ, फिर 4 से कम फ्रीक्वेंसी पे। शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी 0 है, ब्रह्मा बाबा की 1 है, अर्थात ब्रह्मा बाबा को सिर्फ एक ही संकल्प, शिव बाबा को संकल्प आता ही नहीं है, वो ड्रामा के अनुसार कुछ संकल्प आना हो तो आता है, नहीं तो बाबा को संकल्प नहीं आता है। बाबा साक्षी है, 100% साक्षी है ना। बाबा कुछ भी होता है, बाबा साक्षी रहता है ना। तो ब्रह्मा बाबा को एक संकल्प क्या है, सिर्फ जल्दी जल्दी मेरे बच्चे संपन्न और संपूर्ण हो जाएं और जल्दी वापस घर चलें, है ना। एक ही संकल्प बाबा को, दूसरा संकल्प नहीं आता है। तो और हमारा कनेक्शन कब होगा शिव बाबा से, शिव बाबा को 0, ब्रह्मा को 1, और हमारा कितना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2। 15 वाले का संकल्प कनेक्शन होगा क्या बाबा के साथ, हो ही नहीं सकता। नहीं तो क्या होता, 4 बजे आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, 4:40 तक होते होते 2 होता है, 1 सेकंड में हम वहां पहुंचते हैं, इतनी देर में गीत बज जाता है, चलो पूरा योग पूरा हो गया। नहीं होता ऐसे। तो इसलिए हमको अटेंशन रखना है, सबसे पहले जब उठते हैं तो फ्रेश होकर गुड मॉर्निंग करके, ब्रश करके, है ना, और मुंह हाथ धो के अच्छे से एकदम ताजा दम होकर के प्यार और खुशी में आकर के बाबा को याद करें। और प्यार और खुशी के बाद नेक्स्ट स्टेज है आनंद की स्टेज है, और तुरंत आनंद में पहुंच जाएंगे, और आनंद में पहुंच के फिर बाबा की याद में एकदम बाबा की गोद में चले जाओ सूक्ष्म वतन में, और फिर बाबा के पास बात करके थोड़ी देर में परमधाम में चले जाओ। क्योंकि हमारे विक्रम विनाश जो होते हैं वो 1 से कम पर होते हैं। लवलीन स्थिति का अर्थ है बेसिकली हम बाप के, देखो 4 संकल्प कौन से होते हैं, ABCD ना, एक्चुअली कहते हैं ना, हम ज्ञान को बहुत सूक्ष्म सार रूप में कहें तो ज्ञान माना ABCD, आत्मा बाबा कनेक्शन और ड्रामा। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा अर्थात बाबा की संतान हूं, मेरे कनेक्शन और संबंध, मेरे सब संबंध उसके साथ हैं, 9 संबंध मुख्य हैं बाप के साथ, माता पिता शिक्षक सतगुरु बंधु सखा साजन सर्जन और बच्चा, 9 संबंध मुख्य हमारे उसके साथ हैं। एक एक संबंध की डिटेल बहुत है, वो तो आपसे जानते भी होंगे, आप क्लासेस में बताई भी जाएगी एक संबंध की डिटेल, किंतु 9 संबंध से बाबा को अनुभव करना है। योग कुछ और नहीं है, योग माना एक एक संबंध की अनुभूति करना बाबा के साथ, उस गहराई में चले जाएं और फिर जाके, और डी फॉर ड्रामा, डी माना ड्रामा में संसार रूपी नाटक में हम सब आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा है, परमात्मा की संतान है, और हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट पर जा रही है कर्म सिद्धांत के अनुसार। मेरा मीठा बाबा इसका डायरेक्टर है, वो कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है, अर्थात जो व्यक्ति को मैंने दुख दिया हो पिछले जन्म में वो मुझे दुख दे रहा है, और बाबा उसी के अनुसार उसको डायरेक्शन दे रहा है। वो मुझे दुख दे रहा है, बाबा मुझे सहन शक्ति दे रहा है। वो मुझे धोखा दे रहा है, बाबा मुझे परखने की शक्ति दे रहा है, राइट। वो मुझे खुशी दे रहा है, बाबा मुझे खुशी को समाने की शक्ति दे रहा है ना। तो इस तरह से मतलब मुझे बाबा जिसके अंदर जिसको जो आवश्यकता है बाबा उसको वो दे रहा है, ताकि मेरे बच्चे हर बच्चे का अकाउंट क्लियर हो जाए। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ, किसने आपको धोखा दिया है अच्छा हुआ है, बुरा नहीं हुआ है, किसने आपको डांट लगाई है, आपके साथ कुछ गलत किया है अच्छा हुआ है, हिसाब किताब चुक्त हो गया है, आपने पहले किया था पिछले जन्म में इस जन्म में वापस हो गया, राइट। तो बुरा नहीं हुआ है, जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला। तो ये 4 संकल्प हो गए। जब हम 4 की स्टेज में आते हैं, 4 ही संकल्प से 5वां संकल्प नहीं, ई माना एक्स्ट्रा में नहीं जाते, और एफ माना फोर्स फोर्स नहीं लगाता, ये काम इस तरह से होना चाहिए, है ना, जैसे मैं कहूं वैसा ही होना चाहिए, ईएफ में नहीं जाना है, सिर्फ एबीसीडी तक रहना है। तो ये चार संकल्प हैं, तो आपके आपको गहरी नींद आ जाती है, इसी तभी आप गहरी नींद में जाते हैं ना। तो अर्थात जब चार संकल्प हैं तो आप सूक्ष्मतल में पहुंच जाते हैं, जब तीन संकल्प होते हैं तो आपको खुशी की अनुभूति होती है, दो संकल्प होते हैं तो बाबा की गोद में पहुंच, मैं और बाबा, ए और बी, बस है ना। और जब खाली बाबा रह जाता है, अर्थात आत्मा परमात्मा के लंबे इतनी लीन हो जाती है, उससे ये अपना भी ध्यान नहीं रहता है, तो हम सूक्ष्म वतन जो है एक से तीन की दुनिया है। कितनी दुनिया है? एक से तीन की दुनिया है। और परमधाम एक से भी कम की दुनिया है, क्योंकि परमधाम में एक भी संकल्प नहीं है, संकल्पों से परे की दुनिया है। तो जब आप इस संकल्प से भी परे हो जाते हैं तो आप परमधाम में फिर आप महसूस करते हैं कि हाँ मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, तब आपको ऐसा फील होता है कि हाँ सचमुच में बाबा वहां पर अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु चमक रहा है। और जब इस फीलिंग में रहते हैं आप, लाइट, वो भी लाइट, मैं भी लाइट, दादर ये वही लाइट दिखाई देती है, मैं अनुभव ही नहीं होता कि मैं लाइट हूं क्या हूं, सिर्फ उस लाइट में लवलीन हो जाते हैं तो मेरे विकर्म विनाश में लगता था। जो पुरानी मेमोरीज, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे साथ ऐसा करता है, उसके बगैर मैं रह नहीं सकता हूं, उसके बगैर मैं रह नहीं सकती हूं, है ना, ये मेरा बेटा मुझे बहुत प्यार करता है, ये मेरा दुश्मन है ना, ये जो मेमोरीज हैं, ये मेमोरीज डिलीट होने लगती है, इसे ही विक्रम विनाश कहते हैं। ठीक है, तो हमारे विक्रम विनाश होते हैं। तो कम से कम रोज, कम से जितना हम अभ्यास करते जाएं, अभ्यास कर, पहले दिन एक ही मिनट होगा ये, फिर और अभ्यास करेंगे दो मिनट होगा, फिर तीन मिनट होगा, फिर पांच मिनट होगा, दस मिनट होगा, पंद्रह मिनट होगा। अच्छा, ये स्थिति हम सिर्फ सुबह ही अचीव कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हम चार से उठते हैं और धीरे थोड़ी सी पुरुषार्थ करके हम तुरंत दो एक और 0.9 0.8 पे पहुंच जाते हैं। जीरो हो जाए तो आत्मा शरीर छोड़ के चली जाएगी, 0.9 0.8 होने पे ही विकर्ण विनाश होना शुरू हो जाते हैं, राइट। तो इस तरह से हमारे विकर्ण विनाश होते हैं, तो अमृत वेला ही विक्रम विनाश होते हैं। और अमृत वेला करने के बाद, क्योंकि उस समय हमारा मन बहुत रिसेप्टिव फेज में होता है, रिसेप्टिव समझते हैं, हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी होती है, पावरफुल होती है। उसी समय अगर आपके पास मुरली है तो मुरली पढ़ लो, अगर मुरली नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, अमृत वेला नाम की किताब है एक, है ना, हिंदी में बनी हुई ना, एक संपूर्ण पवित्रता नाम की किताब है, एक विदेही अवस्था की किताब है, और एक कर्मयोगी फरिश्ता किताब है। ये चार किताबों से एक एक पॉइंट पढ़ लो, उसमें पॉइंट अव्यक्त बाप दादा के पॉइंट लिखे हुए हैं, अव्यक्त बाप दादा की मुरलियों से पॉइंट है ना, एक एक पॉइंट पढ़ लो और फिर उसी स्थिति में स्नान कर लो। मैं आपको दिनचर्या बता रहा हूं, ठीक है, ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या क्या है, मर्यादाएं बता रहे हैं, मर्यादाओं का महत्व। तो हम ब्राह्मणों की क्या हमारा जीवन होना चाहिए, उसी स्थिति में हम स्नान कर लो, और स्नान करके फिर उसी स्थिति में, आजकल का दिन है ना, तो आजकल 45 मिनट उसी स्थिति में वॉकिंग कर लो। हमारी सैर हमेशा बाबा की याद में होनी चाहिए, दुनिया की तरह से एक्शन कॉन्शियस होके हमको सैर नहीं करनी, वॉक कॉन्शियस होके सैर नहीं करनी, बाबा की याद में। चार से लेकर 8 बजे तक का टोटल समय बाबा की याद का समय है, 8 बजे के बाद ही हम दुनिया के संबंध संपर्क में आए, भले माताओं खाना बनाना है खाना बना लो, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर तो बाबा की याद में। 8 बजे तक दुनियादारी कोई बात सोचना भी गलत है। तो अगर आप 4 से 5 में आधा घंटा आनंद की स्थिति में आ जाते हो तो 18 हार्मोन्स बैलेंस में निकल आते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड से। तो अगले 24 घंटे में जो भी मन की बीमारी है तन की बीमारी कम हो जाती है। तो पहला नियम है अमृत वेला, और दूसरा नियम है मुरली, ठीक है। सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी मुरली मिस ना करे, घर में बैठ के मुरली पढ़ने की बात नहीं है, सेंटर पे जाके मुरली सुने। सेंटर पे जाके क्यों मुरली सुने? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है संघ और वातावरण। घर में आप मुरली सुनेंगे ना, घर में मुरली सुनते हैं, घर में मुरली पढ़ते हैं, या टेलीफोन पे सुनते हैं, या टीवी में सुनते हैं, तो उसका महत्व नहीं है। तो जो संघ और वातावरण सेंटर पर होता है वो मुरली अंदर जाके छप जाती है, स्मृति में आ जाती है। वो हमको मुरली सुनना अति आवश्यक है, ठीक है। खाली सुनना आवश्यक नहीं है, फिर मुरली सुनने के बाद उसमें चार पांच प्रोसेस है, मनन चिंतन, मंथन, सिमरण और फिर स्मृति स्वरूप। तो मुरली जो सुनी ना फिर हमने, उसका फिर मनन करें, मन में उसको सोचे, है ना, रिवाइज करें। मन का बेसिकली मतलब रिवाइज करना है ना। चिंतन माना उसकी गहराई में जाएं, मंथन माना फिर जो हमने पीछे सुना उसी कनेक्शन में कुछ बातें सुनी है उसकी और फर्द गहराई में जाएं, उसे चबाएं। जुगाली जैसे गाय जुगाली करती है ना, उसको मथें, है ना। और फिर जब मथेंगे तो उसका कुछ रस निकलेगा। जैसे आज की मुरली का एक पहला क्या था, मीठे बच्चे क्या था आज का, क्या था, किसको याद है, क्या था बताओ। हाँ, देह सहित जो कुछ भी है उससे अपना क्या निकालो, ममत्व निकाल दो, है ना, और ट्रस्टी होकर रहो, यही था ना। तो अब देह सहित तुम्हारा जो कुछ, देह सहित मेरा क्या है, देह, एक तो देह मेरी है, हम कहते हैं सारा दिन देह मेरी है, फिर क्या बोलते हैं, मेरा बच्चा ये मेरा है, मेरा पति मेरा है, मेरा पत्नी मेरी है ना, मत के संबंध है ना। फिर देह का स्वभाव, मेरी आदत ये है, मेरे को जल्दी करने की आदत है, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, मेरे को जल्दी गुस्सा आता है, मैं बहुत सेंसिटिव हूं, मेरे को आसपास से रोना आता है, मेरे को बहुत डर लगता है, नहीं है ना, स्वभाव है कि नहीं हमारा। कोई कोई कहता है मेरे को आलस, मेरे को हर बात में नींद, थोड़ी देर में नींद आ जाती है ना। कोई कहता है मेरे को तो शक होता है, कि चिंता बहुत है ना। ये भी देह का संस्कार पड़ गया ना, आदत पड़ गई ना। तो ये देह का स्वभाव संस्कार और देह के पदार्थ, ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है ना, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरी चीज है, ये मेरा चश्मा है, ये मेरी साधन। बुद्धि कहां रहती, चश्मा नहीं हुआ, चश्मा लगाते चश्मा नहीं होते, बुद्धि कहां जाएगी, सारा टाइम चश्मे में जाएगी। क्रीम नहीं हो ना थोड़ी तो चेहरे पे लगाने की, तो आज क्रीम नहीं है तो क्या होगा, सारा टाइम क्या रहेगा, आज मेरी क्रीम में क्रीम योग कितना लगता है मुझे बताओ, बाबा योग से ज्यादा तो क्रीम योग लगाते हैं ना हम लोग। अच्छा आज टूथपेस्ट नहीं है, टूथपेस्ट में कितनी देर बुद्धि जाती है, नहीं जाती है, टूथपेस्ट खत्म होने वाला हो, आज बचा ही नहीं सुबह, ध्यान कल लेना ही भूल गए तो क्या, कितना बुद्धि योग जाएगा, है ना। तो कितना सूक्ष्म है ना देह के पदार्थ, इन चारों से ममत्व निकालो, मेरा निकालो, और फिर ये सब कुछ बाबा का है, और इसका फिर ट्रस्टी होकर संभालो। अच्छा दूसरे रूप में कहे तन मन धन, है ना, तन मन धन। ये तन किसका है, बाबा का है, मन किसका है, बाबा का, धन कहे तो बाबा का है। फिर तन जब बाबा का है तो फिर मैं इसको तन को कैसे यूज करूं, जो बाबा ने कहा इस तन द्वारा वही करूं, मन द्वारा वही सोचूं जो बाबा ने कहा। धन सबसे बड़ा धन कौन सा है, हाँ समय, सबसे बड़ा धन है समय। ये संगम का एक एक सेकंड में हेमती है ना, तो सेकंड में किसमें निकालूं, जो बाबा ने कहा है उसमें जाना चाहिए। संकल्प दूसरा धन कौन सा सबसे बड़ा, संकल्प। संकल्प कौन से चलने चाहिए, जो बाबा ने कहे है ना, श्रीमत पे संकल्प करने है ना। फिर क्या, श्वास, फिर ज्ञान है ना, फिर गुण शक्तियां, योग है ना, धारणाएं, फिर आगे आगे और भी बहुत सारी बातें ना। स्थूल धन तो सबसे लास्ट है ना, नहीं ऐसे तो बाबा की श्रीमत पे लगना चाहिए, तब ट्रस्टी हुआ ना। तो इस तरह से उसका मनन चिंतन मंथन करते जाओ, फिर वो मंथन करके फिर वो मक्खन जो है ना, फिर वो उसको सिमरण करो, जो मक्खन निकला ना उसको बार बार आप सिमरण करो, और फिर वो जाके कहां बैठेगा, फिर हमारी स्मृति में उसका, हम स्मृति का स्वरूप बन जाएंगे, शाम होते होते हमारे चेहरे पे दिखाई देने लगेगा का, मैं बाबा का, बाबा मेरा, है ना, तब हमारी स्थिति। तो इस तरह से फिर तो पहली अमृत वेला, फिर मुरली, और फिर सारा दिन अटेंशन और अभ्यास, जो बाबा ने कहा उस पे अटेंशन और उसका अभ्यास सारा दिन चलता रहना चाहिए। बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने आज क्या कहा, फिर उसका अभ्यास, अभ्यास में ये मनन चिंतन मंथन सिमरण और स्मृति स्वरूप। तो जब इस तरह से हम अभ्यास करते हैं, इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, तब जाकर के हमारा क्या होगा, फिर सोने के पहले चौथी बात, सोने के पहले लेटर, चार्ट और याद। तो ये चार हैं ब्राह्मण जीवन के नियम और फिर चार हैं मर्यादाएं। किंतु योग किसका लगेगा, मुरली किसको किसको अंदर बुद्धि में बैठेगी, अटेंशन और अभ्यास कौन कर पाएगा, सोने के पहले लेटर कौन लिख पाएगा बाबा को सच्चे दिल से, चार्ट कौन भर पाएगा, जो पवित्र रहेगा। जैसे मान लीजिए मेरे को चार गोली डॉक्टर ने लिख के दे दी, चार गोली खाना, एक गोली सुबह, एक दोपहर में, एक शाम को, एक रात सोते समय, चार गोली दे दी, ठीक है, चार गोली खा ली। उसने कहा, डॉक्टर ने कहा आप आइसक्रीम मत खाना, गला खराब है ना, गले की दवाई ली मैंने, और आइसक्रीम नहीं खाना, ठंडा पानी नहीं पीना, अचार नहीं खाना, ठीक है, और मैंने क्या किया, मुझे तो खाने का शौक है, आइसक्रीम खाने का शौक है, अचार के बगैर रोटी खा नहीं सकता है ना, तलावे के मना मना कि मुझे पराठा चाहिए, तो मैं वही खाऊं तो क्या होगा, पांच दिन दवाई पूरी हो जाएगी और मेरा गला ठीक होगा क्या, नहीं होगा ना। इसी तरह से भले हम रोज कितना मर्जी अमृत वेले उठते रहें, अगर हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है तो हम क्या क्या क्या, क्या नहीं कर सकते, हमारा अमृत वेला पावरफुल कभी नहीं हो सकता है, विक्रम विनाश हो नहीं सकते हैं। विक्रम विनाश की निशानी क्या है, कल जो व्यक्ति मुझे मिला था और उसको देख के मुझे गुस्सा आया था, या उसको देख के मुझे लगाव पैदा हुआ था, मेरी बुद्धि उसकी तरफ आकर्षित हुई थी, या उसको देख के मुझे मुंह पैदा हुआ था, या उसको देख के मुझे नफरत आई थी, या मुझे अहंकार किसी बात का लाया था, आज वो नहीं आएगा। आज वो व्यक्ति मुझे मिलेगा ना, मुझे फील नहीं होगा, आज मुझे उसके प्रति नफरत नहीं आएगी, उसके प्रति लगाव नहीं होगा, उसको देख के गुस्सा नहीं आएगा, अर्थात वो विक्रम विनाश हो गया, ठीक है। नहीं तो रोज क्या होता है, रोज क्या होता है, रोज हमारी वही कहानी नहीं होती, कई बार होता है कि नहीं होता है, वही कहानी रोज होती है, रोज हम झूठ झूठ किसी बात को देख के झूठ बोलने की आदत, झूठ बोल देते हैं, आज भी बोल, कल भी बोला था, आज फिर बोल दिया, इसका मतलब मेरा विक्रम विनाश नहीं हुआ। तो अमृत वेला भी कर रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, पाप भी रोज हो रहे हैं। तो अमृत वेला पावरफुल कब होगा, जब हमारा पवित्रता हमारी होगी। पवित्रता माना क्या, पवित्रता की डेफिनेशन है मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क और स्वपन तक पवित्रता, अर्थात मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे युगल हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, जब ये स्थिति रहे, जितना पवित्रता की डिग्री बढ़ती जाएगी, मान लीजिए मैं 0 वाट का बल्ब हूं, 0 वाट का बल्ब होता नहीं वैसे, तो मिनिमम 10 वाट का बल्ब होता, शायद 10 या 15 वाट का बल्ब होता, 15 होता है ना, मैं 15 वाट का बल्ब हूं और पावर हाउस से पूरी मोटी तार मेरे पास आई हुई है, तो मेरे अंदर कितनी करंट आएगी, 15 ही वाट आएगी ना, कि 100 वाट आ जाएगी। तो अगर मैंने खाली कर्मणा में पवित्रता अपनाई है, कर्म में पवित्रता अपनाई है, तो सिर्फ 15 वाट की ही करंट मेरे अंदर आएगी, 0 वाट का बल्ब ही चमकेगा, चाहे मैं सुबह से लेकर शाम तक योग में बैठा रहूं, कितना भी योग भट्टी कर लूं। तो कर्मणा में पवित्रता आ गई, फिर उसके बाद बोल में पवित्रता चाहिए, कि अर्थात मेरे से कोई ऐसा बोल भी ना निकले इसमें डबल मीनिंग हो, ठीक है। फिर मन की पवित्रता, सबसे बढ़िया पवित्रता क्या है, टेलीविजन देखना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही। तो आपको जब टीवी देखते हो तो क्या, जब जो सीन दिखा रहे, क्या आपकी बुद्धि नहीं जाती उन सीन्स के अंदर, जाती कि नहीं जाती है? तो आपने अपवित्र कर्म किया तो नहीं, किंतु सोचा तो सही, देखा तो सही, जाती है ना बुद्धि, जा रही है ना, टीवी टाइम पे खोलते है ना, रस आ रहा है ना, तो इसलिए वो भी अपवित्रता है, ठीक है, समझ रहे हैं? तो हम कहते हैं हम तो पवित्र रहते हैं, किंतु पवित्र टीवी देखने तो पवित्र रहते हैं क्या? हाँ ठीक है ना, ठीक बात। तो इसलिए टेलीविजन देखना भी अपवित्रता है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखें कि टेलीविजन देखना, कोई मैगजीन देखना, ये कई सारी मैगजीन आती है ना, बहनों की मैगजीन आती हैं, भाइयों की मैगजीन आती हैं, हाँ जी हाँ, देखो पीस ऑफ माइंड टेलीविजन देखना भी एक्चुअली वो ठीक है, आप देखो। वैसे तो सच सच पूछो तो टेलीविजन पीस ऑफ माइंड देखने की भी आप ब्राह्मणों को आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मणों को आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मणों को देखना चाहिए दूसरी बातें। अगर उनकी बुद्धि भटकती तो पीस ऑफ माइंड तो कम से कम देखो, ठीक है। अगर आपकी बुद्धि पहले ही पीसफुल है तो पीस ऑफ माइंड देखने की आवश्यकता क्या है, नहीं, पीस ऑफ माइंड है ना, मन की शांति है ना, तो आपका मन तो शांत है ना, वो दुनिया के लिए बनाया, आपके लिए थोड़ी ना बनाया, कोई आपके लिए बनाया क्या, ब्राह्मणों के लिए नहीं बनाया। आप अपने अंदर ही अब जाइए ना, आप अपने अंदर गहरे उतर जाइए ना। हमें तो क्या करना है, हमें तो अंदर उतर के एबीसीडी को रियलाइज करना है। बाबा ने जो मुरली दी है उस, हाँ मुरली सबसे बड़ा चैनल ना, शिव बाबा चैनल है वो तो डायरेक्ट ना, वो शिव बाबा चैनल नहीं है डायरेक्ट ना। तो हमें तो अंदर जाके अनुभव करना है, उस बात को अनुभव करना है। मैं एक बात और आपको बताने वाला हूं अभी, तो पहले पवित्रता की बात हो जाए, तो फिर मनसा मन में भी, मन में वही संकल्प है जो बाबा ने दिया है, संबंध संपर्क और सौपन तक भी पवित्रता आ जाए। और उसके बाद अगर आप क्या क्यों कैसे करते हैं, ये भी है पवित्रता। जो बाबा पिछले 3 साल से कह रहे हैं ना, वैध संकल्प करना भी है पवित्रता है। बाबा का बनाया हुआ सीन है, बाबा का बनाया हुआ ड्रामा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रही है, ये क्या हो रहा है, कैसे हुआ, कब हुआ, ये वैध संकल्प। हम भगवान के बनाए हुए ड्रामा में क्वेश्चन करते हैं, अपने बच्चा, ये मेरा बच्चा ऐसा क्यों नहीं मानता है, ये मेरा पति या मेरी पत्नी ऐसा क्यों नहीं मानती है, ये जिज्ञासु ऐसा क्यों करता है, ये भी अपवित्रता है नहीं। तो जितनी ज्यादा गहराई पवित्रता की हम अपनाते जाएंगे, जो जैसा है, आई एम ओके, यू आर ओके, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। स्वचिंतन, सिर्फ स्वचिंतन करना, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लेना, और मुख से बोल के ना परिवर्तन, घर वालों को स्पेशल ध्यान रहे, आप काफी सारे प्रवृत्ति के भाई बहने बैठे हैं, इस बात को ध्यान रखें कि हम जो भी भाई बहने बैठे हैं अपने कर्मों से सिखाएं, बोल के ना सिखाएं। आप अपने बच्चों को कहते हैं ना, बेटा तुम भी चलो मेरे साथ मुरली सुनने चलो, मम्मी मुझे नहीं सुननी है, पापा मुझे नहीं सुननी है, मैं देखता हूं आप रोज गुस्सा करते हो, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मैं गुस्सा नहीं सीखता हूं, आपसे कम गुस्सा तो मैं करता हूं। तो अपने कर्मों से सिखाओ बच्चों को, ठीक है, लोगों को भी कर्मों से सिखाओ, पहले अपने अंदर उतर जाए वो बात, फिर दूसरों को बोलो, नहीं तो बोलने का फायदा नहीं है। तो इस तरह से जब अपने गहराई से इस बात को अनुभव करें, राइट, तो पहली है पवित्रता, दूसरी है शुद्ध अन्न। तो जितनी ज्यादा पवित्रता बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा बाबा से हमारा योग बढ़ता जाएगा, उतना पावरफुल अमृत वेला होता जाएगा, उतनी पावरफुल मुरली हमारे अंदर धारणा में आती जाएगी, उतना अधिक हमारा अटेंशन और अभ्यास सारा दिन रहेगा, है ना। कम से कम 8 बार मुरली हमको पढ़नी चाहिए, कितनी बार पढ़नी चाहिए, भले पूरी मुरली नहीं पढ़ो किन 2 लाइन तो पढ़ो, नोट करके जिम में रखो, खाना बनाने तीन टाइम खाना खाते हैं, 8 बार पानी पीते हैं, है ना, उस समय तो निकाल के देख लो, कार में कहीं जा रहे हैं, ऑफिस में कहीं जा रहे हैं, तो उस समय तो निकाल के देख लो बाबा ने आज क्या कहा, आज का वरदान क्या था, आज का स्लोगन क्या था, साथी और साक्षी, है ना, अटेंशन और अभ्यास था ना आज का बाबा ने कहा ना, तो इससे बार बार तो रिवाइज कर लो, रिवाइज करेंगे स्मृति में होगा तो यूज कर सकेंगे ना। तो इस तरह से तो तो पहले अमृत हो गया पवित्रता, फिर शुद्ध अन्न, शुद्ध अन्न माना बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना, खाना खाते समय कभी बोलना नहीं, खाना बनाते समय बोलना नहीं। और शुद्ध अन्न, कई बार हम कहते हैं बिस्किट खा लो, बिस्किट तो मार्केट के बने हुए हैं, मशीन के बने हुए हैं, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक ही पी लो, है ना, वो तो मशीन का बना हुआ है ना, बिल्कुल गलत है। आइसक्रीम खा लो, है ना, आइसक्रीम में पता है आपको नॉनवेज डलता है ना, जितनी भी आइसक्रीम, कोई भी कंपनी की आइसक्रीम होती है सब में नॉनवेज होता है, नेचुरल वालों की या क्वालिटी वालों की या हैव मोर वालों की, जो भी, सब में नॉनवेज होता है, ये E47 मन होता है ना, ये नॉनवेज होता है, हर आइसक्रीम पे लिखा था E471, प्रिजर्वेटिव डाला जाता है उसको, जिलेटिन डाला जाता है, वो सबका सब वो होता है, ठीक है जी। ओ झूठ मार्क करते हैं, ग्रीन पॉइंट, ठीक है, वो सब कमर्शियल वाले इंडस्ट्रियल होते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, वो बाबा की याद में आइसक्रीम थोड़ी बनाई हुई है। ये बिस्किट जो आते हैं कहीं से बाहर से आते हैं, वो कह रहे बाबा बीके बिस्किट, वो बाबा की याद में बिस्किट थोड़ा बनाए हुए हैं। मशीन योग करती है क्या उसमें? मशीन योग करके बनाती है क्या? और मशीन को बनाने वाले कौन होते हैं? वही नौकर वगैरह, वही क्या बीके वाले की फैक्ट्री है, ठीक है, क्या वो सारे फैक्ट्री में काने वाले बीके होते हैं क्या? उनकी लेबर बीके होती है क्या? या वो मशीन बीके बनाने वाला है कि बीके खड़ा होकर बीके बिस्किट बनवाता है? वो आप अपने 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 आप को हम धोखा देते हैं, नहीं तो बीके बिस्किट खा रहे हैं, खाओ खाओ, ये भी मन की आसक्ति नहीं है क्या? खाने की आसक्ति नहीं है क्या? आज खाना बहुत अच्छा बना है, 3 चपाती खा लो, अच्छा नहीं बना है, 2 चपाती खाओ, आज नहीं खाते खाना, खाना अच्छा नहीं बना, टेस्टी नहीं है ना? तो शुद्धन नहीं, ये शुद्धन नहीं है, ठीक है। पार्ले जी तो नहीं, नहीं नहीं पार्ले जी, वही तो बता रहा हूं मैं आपको, नहीं, वो फिर नहीं नहीं पार्ले जी नहीं लेना, पार्ले जी बीके बीके थोड़ी ना कोई, बाबा की याद में बनाया हुआ क्या? नहीं, वैसे लेने को तो आप कुछ भी ले सकते हो, किंतु मैं तो आपको क्लास में बता रहा हूँ कि हमें अगर अपनी पावरफुल स्थिति बनानी है तो, ठीक है, हाँ जी, क्या ले सकते? नहीं नहीं ब्रेड भी नहीं ले सकते, बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना, खुद बनाओ अगर आपको नहीं आता तो, मतलब खुद बनाना सीख लो, नहीं तो फल खा लो बाजार में, है ना, फल खा के बाबा की याद में खा लो। तो शुद्धन सत्संग, स्मृति बहन बस, स्मृति तो सत्संग माना सत्य का संग, सत्य क्या है? एक तो सत्य बाप है, दूसरा सत्य मुरली है, मुरली में कुछ मिलावट नहीं है, ठीक है, और बाप तो है ही सत्य, तो सत्य और आत्मा सत्य है ना, एक तो सत्य आत्मा का संग, बार बार अपने सत्य स्वरूप में टिकने का अभ्यास करो, सबसे बड़ा अच्छा संग तो ये है जो आपके पास ही है, अपने अपने सत्य स्वरूप में टिकने का अभ्यास, मैं चमकता हूं चमकता हूं सितारा हूं, मैं आत्मा चला रहा हूं, मैं आत्मा देख रहा हूं, मैं आत्मा सुन रहा हूं, मैं आत्मा हार्ट को चला रहा हूं, मैं आत्मा सांस ले रही हूं, मैं आत्मा खाना पचा रही हूं, मैं आत्मा चल रही हूं, तो सारा दिन ये अभ्यास, सत्य स्वरूप अपने बाप, अपने सत्य बाप का संग करो, बाबा मेरे साथ है, कितनी दूर है? एक सोच की दूरी पर है, ठीक है, बाबा बस इतनी दूर है ना, बस बाबा से लाइट आ रही है, बाबा की गोद में ही बैठा हूं, बाबा की गोद में ही चल रहा हूं। फिर दूसरा जो है, तीसरा जो है मुरली, मुरली या तो अपने जेब में रखो, अगर फोटोकॉपी मिल जाती है तो, नहीं तो लिख लो छोटे कागज पे ना, लिख के मीठे बच्चे वरदान स्लोगन धारणा के लिए मुख्य सार, ये बाबा की और कोई बात आपको बहुत अच्छी लगी हो, आज का गीत है जैसे मरना तेरी गली में, तो मरना तेरी गली में अगर ये भी बार बार मन में रिवाइज करो तो भी मुरली हो गई, नहीं तो बार बार बुद्धि में बजता रहे गीत, यही वही गीत बजता रहे, मुरली के पहले जो गीत बजता है वो भी मन में बजता रहे। तो इस तरह से जितना हम इस सत्य का संग करें, फिर दैवी गुणों की धारणा, दैवी गुणों की धारणा माना, देखो जो आत्मा में 7 गुण होते हैं ना, जब वो कर्म में आते हैं ना तो वो दैवी गुण बन जाते हैं, जब आत्मा में 7 गुण भरे हुए हैं तो जितना हम बाबा से योग लगाएंगे उतना 7 गुण हमारे अंदर आएंगे, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुखानंद और शक्ति आएंगी, और वो जब हम कर्म में आएंगे तो हमारा वो मधुरता बन जाएगी, मीठा बोल निकलेगा, धैर्यता बन जाएगी, वो हमारे अंदर सहनशीलता बन जाएगी, वो हमारी सरलता बन जाएगी, वो हमारी गंभीरता बन जाएगी, वो हमारी दृढ़ता बन जाएगी, वो हमारी अंतर्मुखता बन जाएगी, वो हमारी संतुष्टता बन जाएगी, वो हमारी हर्षित मुखता बन जाएगी, वो हमें आज्ञाकारी बनना सिखाएगी, 7 गुण में जब भर जाएंगे ना तो हम आज्ञाकारी बन जाएंगे, वफादार बन जाएंगे, ईमानदार बन जाएंगे, फरमान बरदार। तो इन ये दैवी गुणों में व्यवहार करो, तो जब ये 4 चीजें जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतना हमारा अमृत वेला पावरफुल होता जाएगा। अगर 4 चीजें हमारी कच्ची हैं, हम थोड़ा सा यहां गलती कर दी, खाने में गलती कर दी, थोड़ा देखने में गलती कर दी, थोड़ा सा अखबार देख लिया, थोड़ा सा टीवी देख लिया, थोड़ा सा कोई मैगजीन उठा के देख ली, है ना, थोड़ा सा हमने कुछ सत्य का संग करने की बजाय किसी भाई या बहन का संग कर लिया, है ना, वो मुझे भाई अच्छा लगता है, वो बहन अच्छी लगती है, वो उसके साथ बैठना अच्छा लगता है, उसके अंदर बहुत गुण भरे हुए हैं, है ना, तो सत्य का संग तो नहीं किया ना, तो उसका कर लिया। और कहीं थोड़ी देर, सारा दिन में थोड़ा सा गुस्सा कर लिया, थोड़ा सा धीरज खो दिया, थोड़ी जल्दीबाजी कर ली, थोड़ी सी किसी ने कुछ कहा हमें, हमने उस पर थोड़ा सा रिएक्शन कर दिया। रिएक्शन क्या किया, सिर्फ थोड़ा सा उदास हो गए, मूड ऑफ कर, थोड़ी देर के लिए मूड ऑफ कर दिया। तो हमने, तेरा योग पावरफुल होगा क्या? मुरली याद रहेगी, अटेंशन रहेगा सारा दिन, बार बार मुरली याद आएगी, जेब में मुरली पड़ी है क्या, दिल में दिल करेगा मुरली बाहर निकाल के मैं पढ़ लूं, देख लूं बाबा ने आज सुबह क्या कहा था, आएगा? अभ्यास नहीं हुआ ना। और सोने के पहले लेटर लिखने, या तो लेटर लिखने का समय ही नहीं हुआ, थके हुए ऐसे लगा अभी सो जाओ, छोड़ो अभी कुछ भी नहीं करना है ना, उसमें गैरेज में सो जाओ, है ना, है ना। फिर गैरेज में क्या काटेंगे, गैरेज में क्या होता है, खिड़की होती है क्या गैरेज में, होता है क्या, मक्खी मच्छर बदबू होती है ना, फिर सपने कैसे आएंगे, देखे सपने आएंगे ना, ना? ना? कोई मर रहा है, कोई किसको हो गया, किसी कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ गंदे गंदे सपने आएंगे ना, तो गैरेज में नहीं सोना है, ठीक है। तो इस तरह से चार बातों का, और पवित्रता तो ब्राह्मण जीवन की मूल फाउंडेशन है ना, समय नहीं है इसकी गहराई में जाने, किंतु पवित्रता तो बिना पवित्र, एक बात यहां लास्ट में कह दूं, ये शायद आप लोग इसमें समझ रहे होंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात क्यों है, क्योंकि हमारा जो अभी जो ये रिटर्न जर्नी है ना हमारी, 84वें जन्म से शुरू हुई, 83वें जन्म में बाबा मिला, 84वें जन्म शुरू हो गया, अभी 84 जन्म में हमारी सारे 21वें जन्म तक जर्नी होगी। जो जो हम जिस जन्म में हमने जो जो विक्रम किए हैं वो सब वापस हमारे सामने फाइलें आएंगी, फाइल खुलेगी, फिर हम पुरुषार्थ करेंगे, फिर वो खत्म होगी, फिर डिलीट होगी। फाइल खुले बगैर डिलीट नहीं होती है। जैसे आप SMS भी, कंप्यूटर भी खोलो ना, कंप्यूटर खोलो तो उसको पहले फाइल खोलना पड़ता है, खोल के फिर डिलीट कर सकते हो, ऐसे डिलीट नहीं कर सकते हो ना। तो इस तरह से हमको क्या होता है, जब हम 83वें जन्म में जाएंगे, 83वें जन्म का बुढ़ापा, पाप कम किए हैं, जवानी पाप ज्यादा किए हैं, बचपन फिर पाप कम किए, तो थोड़ा योग लगेगा, अच्छा योग लगेगा। फिर जब जवानी आए, जवानी 83 जन्म की शुरू होगी, पहले बुढ़ापा, उल्टा चल रहे हैं ना, तो जवानी में थोड़ा सा योग, अमृत वेला भी कर रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, कि तो इतना अच्छा योग नहीं लगेगा, पर लगे रहो, और फिर बचपन आएगा, फिर योग लगना शुरू हो जाएगा, फिर 82वां जन्म शुरू हो जाएगा, ठीक है, फिर उसका बुढ़ापे में फिर योग लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है, फिर जवानी में योग करते करते भी स्थिति अच्छी नहीं लगेगी, फिर बचपन आएगा, फिर कम हो जाएगा, ठीक है, फिर 81वां जन्म शुरू हो जाएगा, फिर बुढ़ापा, योग लगेगा, जवानी कम लगेगा, फिर बचपन फिर लग जाएगा। तो एक्चुअली देखने में आप ध्यान से देखो ना, तो अब आपकी स्थिति क्या होगी, ऊंची जाएगी फिर नीचे आएगी। ये था ना कुछ दिन पहले, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। तो हम क्या, ऐसे लग रहा है कि हम गिर रहे हैं, गिर नहीं रहे हैं, हम फिर ऊपर उठेंगे, फिर थोड़ा नीचे आएंगे, फिर ऊपर उठेंगे। जैसे आप आबू रोड से माउंट आबू आते हो ना, तो बीच में क्या आता है, कभी बस नीचे जाते, कभी ऊपर जाते, बस नीचे कभी ऊपर, किंतु हम कर क्या रहे हैं, कहां जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं। अगर हम एवरेज देखेंगे तो ऊपर ही है, हम यहां से चलते चलते कहां पहुंच गए, 4000 फुट पे पहुंच गए, है ना, और आगे जाओ तो 5000 फुट पे गुरु शिखर पहुंच जाएंगे। तो ऐसे हम ऊपर ही जा रहे हैं, किंतु अभी लगता है हम नीचे जा रहे हैं कई बार, तो उसे घबराना नहीं है, ठीक है, राइट। तो कई बार ऐसा लगेगा, आपके सामने वो आत्माएं भी आएंगी जिनके साथ आपका बहुत बड़ा हिसाब किताब होगा, वो आपके आपके घर में ही, आपके दोस्तों में ही, आपके रिश्तेदारों में ही, आपके पड़ोस में ही, आपके बिजनेस में ही कोई ऐसी आत्माएं आएंगी आपके सामने जो बड़ा हिसाब किताब लेके आएंगी। अगर आप रोज अमृत वेला कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, अटेंशन रख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, चार्ट भर रहे हैं, लेटर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आज थोड़ी थोड़ी गलतियां होंगी, रोज गलती थोड़ी थोड़ी होंगी, बताते जाओ, बाबा शक्ति, अमृत वेला शक्ति भरते जाएगा, शक्ति भर के विक्रम विनाश होते जाएंगे, हल्के होते जाएंगे दिन पे दिन, और धीरे 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 पवित्रता पे टेंशन बढ़ती जाएगी, शुद्ध अनुभव और बढ़ता जाएगा, सत्संग और बढ़ता जाएगा, और दैवी गुणों में व्यवहार बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारी पवित्रता की लेवल बढ़ता जाएगा, हमारा योग अच्छा लगता जाएगा। 21 जन्म जब आप पहुंच जाएंगे, 21 जन्म के बाद ये जर्नी स्टेबल हो जाएगी, मतलब आगे सीधी जाएगी, फिर ऐसे ऐसे नहीं होगी, क्योंकि हम सतो प्रधान बन गए, 51% से ज्यादा वोट हमारे पास आ गए, 51% अभी हमारे पास शेयर ज्यादा हो गए, 51% से ज्यादा एमडी फिर हम बन जाएंगे, फिर स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे, ठीक है, फिर कंपनी के डायरेक्टर आत्मा बनेगी। अभी कंपनी का डायरेक्टर अभी भी कौन है? मन है, ठीक है, अभी भी मन को हमें, इसलिए मन जीते जगत जीत है, इसलिए बाबा की श्रीमत पे चल के हम मन पे जीत अभी भी पाते रहते हैं। तो ये फायर प्रूफ ड्रेस है, ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं फायर प्रूफ ड्रेस है। इस फायर प्रूफ ड्रेस को हमेशा पहने रहो और जितना हम योग लगाते जाएंगे उतना हमारा कवच, कवच माना आभा मंडल, बड़ा होता जाएगा। 4 पर अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 4 रहती है, 15 पर तो स्किन के लेवल पे होता है, 8 पर 6 इंच का हमारा आभा मंडल होता है और 6 पर लगभग 4 फुट का आभा मंडल होता है और 5 पर 4, अब 4 गुना बढ़ाते जाओ, ठीक है, 4 फुट से 16 फुट, 16 फुट से 64 फुट, 64 फुट से फिर 4 से गुना कर दो, ठीक है, उतना बड़ा आभा मंडल। अर्थात अगर आप 4 पे हैं तो आपका आभा मंडल लगभग 64 फुट का हो जाएगा। 64 फुट माना कितना? ये पूरा हॉल है ना, मतलब इस यहां बैठेंगे पूरे हॉल में आभा मंडल होगा। या आप देखेंगे जब आप, जब दादियां या हम कोई भी अपने भाई बहन यहां पे आके योग कराते तो क्या होता है, पूरा हॉल आभा मंडल से भर जाता है, शांति प्यार खुशी। आभा मंडल माना शांति प्यार खुशी की एनर्जी, वो आभा मंडल कवच का काम करता है। तो सामने वाले के जो भावनाएं हैं वो कैसी भी भावना से आपके सामने आएगा उसका आपके ऊपर असर नहीं होगा। किंतु लास्ट में किंतु, अगर आपका किसी आत्मा के प्रति मोह है, आपका अपने बच्चे के प्रति मोह है, किसी युगल के प्रति मोह है, किसी भाई बहन के प्रति मोह है, तो उसको उसने दिल में बसा के रखा है तो वो आभा मंडल उसके लिए काम नहीं करेगा, उसमें छेक हो जाएगा और वो आभा, उसकी कही हुई बात आपको लग जाएगी, उसकी भावनाएं आपको असर कर देंगी और फिर आप फंस जाएंगे। इसलिए याद रहे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो जितने भी हमारे संबंधी हैं, पति पत्नी भाई बहन बच्चे माता पिता सास ससुर, वो हमारे संबंधी नहीं है, वो उनका प्रति हमारा फर्ज है, ड्यूटी है पिछला हिसाब किताब चुट्टू करने की। संबंध सारे शिव बाबा के साथ है, ठीक है। ओम शांति। हां जी, हां जी, हाँ। प्राणायाम, देखो प्राणायाम हठ योग है, प्राणायाम शरीर के लिए बता रहा हूं, प्राणायाम हठ योग है तो हमें हठ योग करने की आवश्यकता नहीं। श्वास एक नेचुरल प्रक्रिया है, जब आप जितने गहरे शांत होते हैं उतना ही गहरा आपका श्वास अपने आप ही गहरा और स्लो चलेगा, और आप हठ से अगर सांस को लंबा ले रहे हैं और फिर रोक रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं तो ये हठ की प्रक्रिया है। और कोई भी काम हठ से करते हैं उसके अंदर, उससे आपके चिड़चिड़ापन बढ़ता है, इरिटेशन बढ़ता है। एक जर्मनी में अभी स्टडी है 2003 में आई थी कि जो प्राणायाम करते हैं उनका एंगर कंटेंट बढ़ जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है तो क्रोध बढ़ता है। इसलिए देखा होगा जितने सन्यासी होते हैं उनको क्रोध बहुत आता है, उनकी बात मानी माना तो क्रोध एकदम श्राप देने को तैयार हो जाते हैं। तो आपको अगर क्रोध बढ़ाना है तो जरूर प्राणायाम करिए, ठीक है। ओम शांति। अगर आप देखो प्राणायाम, कोई देवता कभी प्राणायाम करता है क्या, है ना, कभी किसी देखा लक्ष्मी नारायण प्राणायाम करते हैं, हनुमान जी प्राणायाम करते थे क्या, या गणेश जी प्राणायाम करते थे, या बाबा ने कभी कहा प्राणायाम करो? नहीं, बाबा की श्रीमत है क्या, बाबा की श्रीमत है क्या प्राणायाम? बाबा ने कहा हठयोग, जो हठयोगी कभी राजयोग नहीं करता है, राजयोगी सिखा नहीं सकता है, और राजयोगी कभी हठयोग नहीं, बीमारों के लिए भी नहीं, सिर्फ बाबा की याद। मैं इसे एक दोबारा बता दूं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। आप आज की मुरली में हर बात की राय बाप से लो। अगर आपको सिर में दर्द हो रहा है बाबा के पास जाओ, सूक्ष्म वतन में जाओ, बाबा आपका सिर ठीक कर देगा, आप बाबा आपका सिर दबाएगा, मालिश कर देगा, ठीक है। हर बात बाबा कहेगा अच्छा बच्चे उस डॉक्टर के पास चले जाओ, बच्चे ये दवाई ले लो, बाबा के पास जाओ ना, कितनी दूर है बाबा, एक सोच की दूरी पर तो है ना। सबसे बड़ा सज्जन कौन है? शिव बाबा, तो बताएगा ना आपको। अगर वो कहे हठयोग कर लो तो फिर कर लेना, मेरे को तो आज तक कभी नहीं कहा। और किसी मरीज, मैं सब मरीजों के लिए पूछता हूँ बाबा से, तो बाबा ने कभी नहीं कहा इसको हठयोग प्राणायाम करना सिखा दो। बाबा ने कभी प्राणायाम किया था? फॉलो फादर किए, फॉलो फादर करना ना, दादी जानकी जी प्राणायाम करती हैं, दादी प्रकाशमणि जी करती थी, तो आप करना चाहते हो? ओम शांति। मोस्ट स्टेबल माइंड, उसकी डेल्टा रिदम रहती है ना हमेशा, तो आप भी डेल्टा वाले बनो ना, फॉलो दादी करो ना। चलो
नहीं भाई साहब, बात यह है कि आजकल इतना बढ़ा चढ़ा करके ये बात को फैलाया जा रहा है कि एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है और ये सब रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस से काफी हमारी सेहत अच्छी बनती है, बहुत सारी बातें आजकल।
नहीं नहीं, मैं बता दूं, वैसे बता दूं, देखो प्राणायाम करने से सबसे बड़ी बात नुकसान क्या हुई, इसलिए अभी रामदेव जी ने भी इसको बोलना कम शुरू कर दिया। पहले 10% केस में सिर्फ 100 लोगों को स्ट्रोक होता था ना, 100 स्ट्रोक होते थे, उसमें 10% में सिर्फ हेमरेज होता था, 90% में क्लॉट हो जाता था, क्लॉट से हेमरेज। किंतु अभी प्राणायाम करने से क्या हुआ, स्पेशली भास्त्रिका करने से 40-50% हेमरेज बढ़ गए। जब आप भास्त्रिका करते हैं जोर से तो ब्रेन की नसें फट जाती है, इवन हार्ट अटैक भी ज्यादा होने लगे, कम नहीं हुए। तो ये राजयोग ही एक क्योंकि सारी बीमारियां, ये बात ध्यान से समझ लो, सारी बीमारियां हमारे पाप कर्मों की सजा है, चाहे हार्ट अटैक आता है, चाहे ब्रेन का, चाहे घुटने खराब होते हैं, चाहे कमर दर्द होता है, ये सब हमारे गलत संकल्पों से पैदा होते हैं। और गलत संकल्प कभी भी या पाप कर्म कभी भी हठ योग से विनाश नहीं हो सकते। राजयोग एक विधि है जिसके द्वारा ये हो सकता है। अपने खान पान में जो बाबा ने कहा उसके अनुसार भोजन करो, समय पर करो, चबा चबा के करो, रोज 45 मिनट सैर करो, शाम को 30 मिनट सैर करो, तो आपकी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाए। समय पर सो जाओ, समय पर उठ जाओ, बाबा को अपनी हर बात लिख करके दो, हार्ट की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सब बीमारियां बिना ही किसी फिजिकल क्रिया के खत्म हो जाती हैं। बाकी जितने तरीके हैं ये तरीके सिर्फ एक पैरासिटामोल की गोली जैसे हैं, क्रोसिन की गोली जैसे हैं। बुखार लगेगा, बुखार उतर गया, है मलेरिया, 4 घंटे बाद फिर जोर से आएगा, ठीक है। इसलिए किसी भी तरीकों से, फिर दोबारा से, मेरा तो एक शिव बाबा, मेरा एक रामदेव नहीं, एक शिव बाबा एक रामदेव नहीं, है ना, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। प्रैक्टिकल करके देखो आप, एक्सरसाइज के तौर पे भी नहीं, एक्सरसाइज के तौर पे भी नहीं। मैं बाबा से देखता हूँ, बाबा कितने हमारे पास भाई बहनों के, हम बाबा से मैसेज लेते हैं, दादी गुजार जी से मैसेज लेते हैं, बाबा से सम्मुख मैसेज लेते हैं, बाबा ये भाई बीमार है, ये बहन बीमार है, क्या करें? बाबा कहते हैं उसको ये करो, वो बाबा को याद करेगी और फला डॉक्टर को दिखा दो, अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। बाबा ने कभी नहीं कहा बच्चे आप थोड़ा प्राणायाम करवा दो, थोड़ा अनुलोम विलोम करवा दो, है ना। तो बाबा ने कभी किसी के लिए, पिछले 20 साल से तो मैं बाबा से सम्मुख देख रहा हूं कितने भाई बहनों को कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। इसलिए इन बातों में नहीं जाओ, अगर जाओगे तो ये बाबा की श्रीमत नहीं है, मनमत परमत है, इसमें नहीं जाओ, ठीक है। क्योंकि अपना अगर फिर डिग्री की बात है, अभी थोड़ा सा कर लो तो अभी हो सकता है शरीर थोड़ा सा इस सड़े गले शरीर में थोड़ा फायदा हो जाए, है ना, फिर 21 जन्म का वो सुख नहीं मिलेगा बढ़िया वाला, ठीक है। ऑप्शन,
थैंक यू डॉक्टर सतीश भाई, आज बहुत सारी हमने अपनी धारणाओं की गहराई को भी समझा है और काफी सारी साइंटिफिक तरीके से भी इन बातों को हमने समझा है कि बाबा की मिली हुई जितनी भी श्रीमत है, मर्यादाएं हैं, धारणाएं हैं, वो हमारे ब्राह्मण जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और इसका योगी जीवन से कितना गहरा लिंक है। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ जी। बाकी आज आप सबकी दिल हमारी मुनि दीदी के पास पहुंची है और आज प्रोग्राम मिला है कि 6:30 से 7:30 हम सभी शांति स्तंभ पर योग करेंगे, तो यहाँ से उठ करके सभी शांति स्तंभ पर जाएंगे, वहाँ योग शुरू हो गया होगा, तो हम बहुत फरिश्ते रूप में बिना आवाज के अपनी जगह ले लेंगे और फिर रात्रि को 9 बजे भगवान भाई जो किचन डिपार्टमेंट में शांतिवन में है उन्हों का क्लास रहेगा निर्विघ्न स्थिति पर।